अर्थ तप का वर्णन साधन में पहले सूत्र में किया गया, अब संक्षिप्त रूप से कहते हैं। जिस प्रकार धातुओं को अग्नि में बारंबार तपाने से उसका मल दूर हो जाता है, इस बार तप के निरंतर अभ्यास से साधक का शरीर स्वस्थ स्वच्छ और लघु हो जाता है और उसे शरीर सुगंधी अनमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और इंद्रियां देव दर्शन देव श्रवण और दूर श्रवण आदि सिद्धियों को प्राप्त हो जाती है। सिद्धियां आठ प्रकार की हैं, शब्द और अध्ययन, सोहृत प्राप्ति, दान। सोहृत प्राप्ति मैंने प्यारियां दी प्राप्ति, गुरु इष्ट दी, दान अध्यात्मक, दुख दान और आदि भूतक, दुख हान आदि दैविक, दुख हान आदि। इनके प्राप्त होने पर सूक्ष्म दूर देश में व्यवधान पर्दे दे युक्त स्थान में स्थित विषयों का देखना सुनना और इंद्रियां संबंधी सिद्धियां हुंदी हैं। स्वयं अध्याय से इष्ट देवता संप्रयोगा, इष्ट देवता का साक्षात हुंदा है। स्वयं अध्याय से इष्ट देवता का साक्षात हुंदा है। वेद आदि स्वयं अध्याय से पढ़ना इच्छित देवता एवं तत्वज्ञानी महात्माओं का सत्संग हुंदा है। देवता का अर्थ दिव्य गुणवान विद्वान भी है, अर्थात ऋषि सिद्ध आदि अथवा योगी को व्यवहार सिद्धि के वास्ते वसु आदि 33 देवताओं सूर्य आदि का प्रकाश व वृष्टि के लिए दर्शन हुंदा है अथवा फिर दृष्ट देवता से परमात्मा का आशय ग्रहण कर सकते हैं। स्वयद्वाय तथा परणम ओम के जप आदि से परमात्मा के साथ संयोग हुंदा है, फिर उसकी सहायता से मुक्त पद प्राप्त हुंदा है अथवा स्वयद्वाय से उपास्य के जिन गुणों की एवं यंत्र मंत्र की धारणा की जाती है तो ध्यान की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर रजोगुण तमोगुण शून्य हुआ चित सचिकित्सा की प्रकाश में इष्ट आकार में स्थित हो जाता है। समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि ईश्वर परिनिधानात, ईश्वर परिनिधान से हुंदी है। समाधि की सिद्धि ईश्वर परिनिधान से हुंदी है। ईश्वर परिनिधान का पीछे वर्णन किया गया है, मनवाणी और कर्म से ईश्वर की भक्ति नाम रूप लीला श्रवण कीर्तन मनन द्वारा देह इंद्रियां अंतःकरण मन प्राण को एवं उनसे होने वाले कर्मों को तथा उनसे होने वाले परिणामों को ईश्वर के समर्पण कर देने से विघ्न दूर हो जाते हैं। समाधि शीघ्र सिद्ध हुंदी है। इससे यह तर्क ठीक नहीं कि ईश्वर परिनिधान से ही समाधि सिद्ध हुंदी है, तब योग के अन्य जड़े सात साधनों की क्या आवश्यकता है। अतः यहाँ परस्परा अलंकार है, योग के अन्य जड़े होर सात अंगों बिना ईश्वर परिनिधान की ईश्वर दे मेल दी सिद्धि नहीं हुंदी है। अतः दोनों ही साधनों से निर्विघ्नता पूर्वक समाधि हुंदी है। समाधि सिद्धि होने पर योगी देशांतर और कालांतर में भविष्यतब पदार्थों का ज्ञान करने वाला हो जाता है। अब आगे के सूत्र विच आसन का लक्षण दसदे हन। स्थिर सुख आसनम, स्थिर निश्चल हलन चलन ते रहत सुखपूर्व बैठने का नाम आसन है, अर्थ स्थिरता पूर्वक बिना हिले जुले सुख के साथ किसी प्रकार की पीड़ा ना हो बहुत समय तक बैठ सकें, वही आसन उपर्युक्त हैं। वही आसन जिहड़े आ उपयुक्त हैं। वैसे बहुत से आसनों के नाम विधि है, जैसे स्वास्थक आसन, स्वास्थक आसन, पेदासन, समासन, पद्मासन, बद पद्मासन, वीर आसन, गोमुख आसन, वज्र आसन आदि है। परंतु सूत्रकार ने बैठने का आसन साधक की इच्छा पर छोड़ देता है, वही आसन ठीक है जिससे शरीर स्वस्थ हल्का योग साधन के लिए योग बनने में सहायता प्राप्त हो। अधिकतर पद्मासन उपयुक्त होता है। विधि, चौंगड़ी लगाने में दाहिने पैर की को बाएं रान की मूल में और बाएं पैर की दाहिने रान की मूल में जमा कर रखने से पद्मासन बनता है। आसन के समय गर्दन सिर कमर को एक रेखा में सीधा रखना चाहिए। साधु को आसन सिद्धि तब समझनी चाहिए जब 3 घंटे और 36 मिनट बिना हिले जुले सुख से बैठ सके। उसका सरल उपाय यह है कि अभ्यास के लिए एकांत स्थान, कोठड़ी, कमरा या निर्जल जंगल हो जहां किसी प्रकार का उपद्रव न हो और धूप दीप से उस स्थान को सुगंधित करना चाहिए। अभ्यास में बैठने से 3 घंटे पूर्व कुछ भी भोजन न करना चाहिए। बैठने को चौकी के ऊपर कुछ आसन और उस पर ऊन का आसन या रेशमी वस्त्र होना चाहिए। मृग चर्म आदि का उपयोग न किया जाए। अभ्यास के आरंभ करने से पूर्व बस्ती धोती आदि क्रियाओं से शरीर शुद्ध करना चाहिए ताकि मलमूत्र के वेग न होवे। मूलबंध और उड्यान बंध लगाकर गुदा एवं लिंग स्थान के छिद्र को बंद कर पद्मासन के अभ्यास पद्मासन से अभ्यास करना चाहिएगा है। कुछ दिनों के अभ्यास से पश्चात आसन स्वयं उठने लगता है। आसन का उठना शारीरिक क्रिया है, उससे अध्यात्म विषय का संबंध नहीं। वास्तविक समाधि तीव्र वराग से ही ध्यान द्वारा वृत्तियों के निरोध पूर्वक हुंदी है। जैसा कि अन्यत्र वर्णन किया गया है, प्रयत्न शैथिल, प्रयत्न की सफलता, अनंत समापत्ति अभ्यास भ्याम, अनंत समापत्ति भ्याम और कहते आनंतों में समापत्ति द्वारा आसन सिद्ध होता है। प्रयत्न शैथिल, प्रयत्न की शिथिलता, अनंत समापत्ति भ्याम, समापत्ति भ्यास और अनंत से समापत्ति द्वारा आसन सिद्ध होता है। आसन प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में समापत्ति द्वारा सिद्ध होता है। प्रयत्न शैथिल अनंत समापत्ति भ्याम, प्रयत्न को शीतलता, कमजोरी और परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। समापत्ति भ्याम शरीर की स्वाभाविक चेष्टा, अंग मेयत्व अर्थात शरीर का डामाडोल होना, कंपना है, उससे उपरत होना, उपराम होना प्रयत्न की शिथिलता है और शरीर को सीधा स्थिर करके सुखपूर्वक साधन की ढूंढता से शरीर संबंधी सब चेष्टाओं को छोड़कर अनंत परमेश्वर में तद्रूपता हो जाने से आसन सिद्ध होता है। फिर साधक अपने को भूला हुआ जैसा समझकर बहुत समय तक सुख पूर्वक बैठ सकता है। सूत्र में अनंत समापत्ति से यह तात्पर्य है कि चित्त वृत्ति रूप से हर समय अनेक प्रसन्न पदार्थों की ओर घूमता रहता है, उसकी प्रसन्नता में अस्थिर रहता है। अप्रसन्न आकाश आदि में जो अनंतता है उसमें चित्त को तदाकार करने से चित्त निर्विषय होकर स्थिर हो जाता है, तभी आसन सिद्ध होता है। ततो द्वंदा, आसन सिद्ध होने पर तथा उससे दबंद अनविध घाता से दबंद की चोट नहीं लगती। आसन की सिद्धि से दबंदों की चोट नहीं लगती। आसन सिद्ध होने पर दबंदों शीत उष्ण आदि का आघात नहीं लगता, दुख नहीं होता। जब आसन की पूर्वोक्त प्रकार से पूर्ण सिद्धि हो जाती है तब गर्मी सर्दी भूख प्यास नहीं सतांदे और शरीर में सहन शक्ति होने से ध्यान समाधि में विक्षेप नहीं होता है। तस्मन सती, उस आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास पर श्वास्यो श्वास और परश्वास की गति विषेदा गति को रोकना प्राणायाम, ये प्राणायाम है। आसन के स्थिर होने पर श्वास पर श्वास की गति का रोकना प्राणायाम है। श्वास बाहर की बाजू का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। परश्वास पोष्ट स्थित बाजू का नासिका द्वारा बाहर निकलना परश्वास कहलाता है। और जड़ा श्वास परश्वास की गतियों का प्रवाह रेचक पूर्वक और कुंभक द्वारा बाहज अभ्यंतर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। और रेचक प्राणायाम की बहिर्गति होने के कारण उनसे श्वास की स्वभावक गति को तो पाव हुंदा ही है, पर कोष्ठ की बाजू बहिर ब्रेचन करके बाहर की धारण करने से परश्वास स्वभाविक गति का भी अभाव हो जाता है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में परश्वास गति को तो अभाव होता ही है, पर बाह्य बाजू पान करके शरीर के अंदर धारण करने से श्वास की स्वाभाविक गति भी अभाव हो जाता है। और कुंभक प्राणायाम में रेचक पूरक प्रयत्न के बिना केवल वैधारक प्रयत्न से प्राणवायु को एकदम यहाँ के तहाँ रोक देने से श्वास पर श्वास दोनों की गति का अभाव हो जाता है। बार आसन के स्थिर होने पर श्वास पर श्वास गति को रोकना प्राणायाम है। बाहर की वायु को नासिका से खींचना श्वास है तथा पोष्ट पेट स्थित वायु को नासिका से बाहर निकालना परश्वास है। श्वास परश्वास की गतियों का प्रवाह रेचक पूर्वक कुंभ द्वारा बाहर की तरफ दोनों स्थानों में रोकना ही प्राणायाम है। प्राणायाम तीन प्रकार का है, बाह्य वृत्ति रेचक, अभ्यंतर वृत्ति पूर्वक, स्तंभ वृत्ति कुंभक। यह प्राणायाम आसन सिद्धि के बाद सपन्न होता है, अतः बिना आसन सिद्धि ये प्राणायाम करना उचित नहीं। प्राणायाम का अभ्यास उसी समय ठीक होगा जब आसन सिद्धि हो जावे। प्राणायाम के भेदान दस दे हैं। अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति तीनों प्रकार का प्राणायाम देश काल संख्या भी पर दृष्टा देश काल और संख्या से देखा हुआ दीर्घ सूक्ष्म लंबा और हल्का होता है।
तस्मन सती श्वास पर श्वास जोगर गति विषेदा प्राणायाम। आसन के स्थिर होने पर श्वास पर की गति को रोकना प्राणायाम है। प्राणायाम बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति ऐसे तीन प्रकार का होता है, तथा वह देश काल संख्या से देखा हुआ लंबा और हल्का हो जाता है। इस सूत्र में प्राणायाम के तीन भेदों को कहा है। वह इस प्रकार है कि श्वास को बाहर निकालकर उसको बाहर ही जितने समय तक सोख से रोक सके रोके रहना, और ये भी ध्यान रखना कि बाहर आकर कहाँ ठहरा है और कितने समय तक ठहरा है, और उतने समय में स्वाभाविक प्राण की गति की कितनी संख्या हुंदी है। यह बाह्य वृत्ति रेचक प्राणायाम है। इसमें बाजू को रेचक पूर्वक रोका जाता है। यह देश काल संख्या से परीक्षा करते समय प्राणायाम जैसे जैसे उन्नत हुंदा जाता है वह लंबाई बहुत देर तक रुकने वाला और सूक्ष्म हल्का हुंदा है, अर्थात परीक्षम थोड़ा हो जाता है। जैसे रेचक प्राणायाम प्रथम आरंभ किया जाए तो जांच करने के लिए नासिका से कुछ दूरी पर रुई रखकर यह देखो कि रुई श्वास से हिलती है और कितनी उंगल नासिका से दूर रुई है। रुई और नासिका छिद्र के अंतर से लंबाई बलून हुंदी है। कुछ दिनों के अभ्यास से और ज्यादा दूर पर रुई रखकर देखने की अधिक दूरी पर रुई हिलने से लंबाई मालूम हुंदी है। इस पर जब 12 उंगल रेचक स्थिर हो जाए तो उसकी दीर्घ सूक्ष्म संज्ञा जाननी चाहिए। जिस पर रेचक प्राणायाम में श्वास की लंबाई बाहर बढ़ती जाती है उसी पर पूर्व प्राणायाम से भीतर बढ़ती जाती है। अभ्यास करते करते प्राण वायु नाभि तथा पैर तले तक ऊपर मस्तक पहुंच जाती है। नाभि तक पहुंचने की स्थिति को दीर्घ सूक्ष्म कहते हैं। ये परीक्षा रेचक पूर्व की है। कुंभ में ना बाहर निकलती है ना भीतर बाजू जाती है। यह देश परिदृष्ट देश द्वारा परीक्षा हुई। इसी बार रेचक पूर्व कुंभक प्राणायाम की काल समय द्वारा परीक्षा की जाती है। प्रारंभ में जितने समय तक प्राणायाम हुंदा है धीरे धीरे ज्यादा समय तक रुकने वाला हुंदा जाता है। बढ़ते बढ़ते जब 36 मात्रों उपरंत श्वास पर श्वास की गति का अभाव हो वह दीर्घ सूक्ष्म संज्ञा वाला हुंदा है। एक मात्रा का समय हाथ की जंगा के चारों ओर घुमाकर चुटकी बजाने में जितना समय हुंदा है यह काल परीक्षा है। इसी वह प्राणायाम के द्वारा कई मामूली स्वाभाविक श्वास पर श्वास का एक एक श्वास हुंदा है। जब अभ्यास से 12 श्वास पर श्वास का एक श्वास हो जावे तब प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म संज्ञा वाला हुंदा है। 24 श्वास पर श्वास का एक श्वास होने तक प्रथम उद्गात नष्ट और मृदु दीर्घ सूक्ष्म कहलाउंदा है। 36 स्वाभाविक श्वास पर श्वास का एक श्वास होने तक द्वितीय उद्गात मध दीर्घ सूक्ष्म कहलाउंदा है। 4 श्वास तक तृतीय उद्गात तृतीय दीर्घ सूक्ष्म कहलाउंदा है। उद्गात का अर्थ प्राण वायु का सिर नाभि में टक्कर खाना है। यह श्वास पर श्वास की संख्या द्वारा परीक्षा है। अभ्यास करते करते सनन सनन बढ़ता जाता है। श्वास की संख्या का ये निजम है कि स्वस्थ मनुख एक मिनट में 15 बार श्वास लेता है। बाजू के अंदर जाने की स्थिति को श्वास एवं भीतर रुकने की स्थिति को विराम, बाहर निकालने की स्थिति को परश्वास एवं बाहर रुकने की स्थिति को विराम कहते हैं। इस तरह प्राणायाम के द्वारा शरीर को प्राण बाजू का वशीकार हो जाता है और शरीर स्वस्थ दीर्घ आयु कुंडलनी जागृत हुंदी है। बाहज वृत्ति वाले रेशे की जिस प्रकार बता चुके हैं उसी प्रकार अभ्यंतर वृत्ति पूर्क को दस दे हन। प्राण बाजू को भीतर ले जा कर जितने समय तक सुख से रोके रोके रहना और यह भी मालूम करना कि अंदर कहाँ तक प्राण बाजू रोकता है, कितने समय तक ठहरता है और उतने समय में मामूली श्वास कितनी बार चलती है, यह अभ्यंतर पूरक प्राणायाम है। बिना रेचक पूरक के अर्थात प्राण बाजू स्वभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहाँ तो वही उसकी गति को रोक दिया जाता है और यह देखना कि प्राण किस देश में रुके हैं, हृदय की धड़कन हाथ की नाड़ी से मालूम होता है। प्राण कितने समय तक रुके हैं, स्वभाव गति की संख्या कितनी है, इस तरह देश काल संख्या के परिणाम से दीर्घ सूक्ष्म जानना चाहिए। यह स्तंभ वृत्ति वाला कुंभक प्राणायाम है। अभ्यास करते समय तीनों को रेचक पूरक कुंभक को पर्ण रूप जानकर पर्ण उपासना की भावना ओम या गायत्री का जप करना चाहिए। किसी किसी शास्त्रकार ने कुंभक के आठ भेद वर्णन किए हैं, उनके नाम सहत सूरज भेदी और उजियाई शीतली पस्त्रका भ्रमरी मूर्छा केवली ये हैं। प्राणायाम का अभ्यास बहुत सावधानी से करना चाहिए। अनुभवी गुरु से एवं शास्त्रों द्वारा इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही प्रारंभ किया जावे तो सुगमता से सिद्ध हुंदा है। प्रथम आसन सिद्धि की क्रिया करने के बाद खेचरी मुद्रा से नेत्र बंद करके एवं सिर गर्दन मेरुदंड सीधे रहें तथा शरीर शिथिल रहे प्राणायाम करना चाहिए। आरंभ में सीधे नाक के छिद्र को सीधे हाथ के अंगूठे से दबाकर पूरक करते हैं। कुंभ करने पर सीधे हाथ की अनामिका और तेनामका और कनिष्ठिका उंगलियों से नासिका के बाएं छिद्र को दबाकर प्राण वायु को भीतर रोकते हैं। सीधे नाक के छिद्र से रेचक करते समय बाएं छिद्र को बंद किए रहते हैं। शनै शनै अभ्यास करने पर उंगलियों की सहायता के बिना भी रेचक पूरक कुंभक करते हैं। चौथे प्राणायाम को कहते हैं अभ्यंतर विषय अक्षेपी, बाहर अंदर के विषयों को फेंकने वाला अर्थात आलोचना करने वाला चतुर्थ चौथा प्राणायाम है। बाहर और भीतर के विषयों को त्याग देने से स्वतः होने वाला चौथा प्राणायाम है। व्याख्या, पूर्व सूत्र में तीन प्राणायाम वर्णन किए हैं, उनसे यह भिन्न चौथा प्राणायाम है। इसमें अंतर इतना ही है कि पूर्वोक्त रेचक पूर्व कुंभक प्राणायामों में देश काल संख्या से परिदृश्य बाह्य विषय अभ्यंतर विषय हैं। इस जानकारी को त्याग कर मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से देश काल संख्या के ज्ञान के बिना ही स्वतः प्राण की गति जिस किसी देश में रुक जाती है वही वह चौथा प्राणायाम है। यह अनावास होने वाला राजयोग प्राणायाम है। इसमें मन की चंचलता ना होने से अपने आप प्राणों की गति रुक जाती है। पहले प्राणायामों से प्रयत्न द्वारा अभ्यास करते करते प्राण की गति रुकती है। पहला रेचक से पोष्ठ स्थित वायु को बाहर निकालकर रोक दिया जाता है। भुजा पूर्व से श्वास को अंदर खींचकर अंदर रोक दिया जाता है। तीजा श्वास परश्वास की गति का भाव कुंभक है। बाहर भीतर कुंभक के बिना ही रेचक पूरक द्वारा देश काल संख्या के ज्ञान के बिना स्वयं ही श्वास परश्वास की गति के निरोध से यह प्राणायाम हुंदा है। सरल उपाय यह है कि पहले रेचक द्वारा परश्वास को जहां तक जा सके बाहर ले जाएं, पुनः श्वास को बिना रोके पूरक द्वारा अंदर ले जाएं। इसी प्रकार अभ्यास करते करते कुंभक के बिना स्वयं दीर्घ सूक्ष्म होकर श्वास पर श्वास की गतियों का अभाव हो जाता है। साथ साथ ओंकार या गायत्री मंत्र का मानसिक जप अवश्य करते रहना चाहिए। गोदा एवं लिंग के छिद्रों को बाएं पैर की एड़ी से बंद करने को मूलबंद कहते हैं तथा दोनों जंघाओं को मोड़कर पैरों के तलुओं को आसन में मिलाकर पेट को रीढ़ की हड्डी से चपटा देने को उड्यान बंद कहते हैं। इस प्राणायाम क्रिया को मूलबंद तथा उड्यान बंद लगाकर प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इनसे प्राणायाम करने में प्राण वायु को ऊपर ले जाने में सहायता मिलती है। अर्थात अपान वायु ऊपर प्राण वायु से आसानी से मिल जाती है। यद्यपि प्राणायाम अनेक प्रकार के हैं, परंतु राजयोग के उपरोक्त प्राणायाम निर्वीज समाधि में मन के उद्वेग शांत करने में अति उत्तम हैं। जब अब प्राणायाम का फल दस दे हन। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, सूत्र अर्थ है प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान का आवरण पर्दा विवेक ज्ञान का पर्दा नाश हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनुष्य के संचित कर्मों के संस्कार अविद्याजनक क्लेश जो कि ज्ञान के आवरण रूप हैं दुर्बल होते जाते हैं। इसी वर्ण से ज्ञान टका रहने के कारण संसार के विषय वासनाओं से पीड़ित मनुष्य दुखों को भोगता रहता है। अतः यह संचित कर्मों का पर्दा प्राणायाम के अभ्यास से शने शने क्षीण हो जाता है। तब विवेक ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हो जाता है। जैसे तपाए हुए सोने के सभी मल नष्ट हो जाते हैं, इसी तरह प्राणायाम करने से इंद्रियां के मल नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम करने का अन्य होर भी फल अगले सूत्र विच कहते हैं। धारणा सु चा योग्यता मनसा, धारणा से मन की योग्यता हुंदी है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और उससे धारणा जिसका वर्णन अगले पाद में किया जाएगा की योग्यता आ जाती है। अप्रत्याहार के लक्षण अगले सूत्र विच कहते हैं। स्वै विषय संप्रयोगे चित स्वरूपा अनुकार एव इंद्रियाणां प्रत्याहारां। स्वै विषय अपने विषयों के साथ असंप्रयोगे संबंध न होने पर चित्तस्य स्वरूप अनुकारा एवं चित्त के स्वरूप का अनुकरण अर्थात नकल जैसा करना इंद्रियाणां इंद्रियों का प्रत्याहारा प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप अनुकरण नकल जैसा करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना, उल्टा होना। विषयों से विमुख होना, अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है वह प्रत्याहार है। पहले बताए हुए साधन याम नियम प्राणायाम की क्रिया से चित्त बाह्य विषयों से वैराग्यकृत होकर समाहत होता है, भावक अग्र होता है और इंद्रियां भी अंतर्मुख होकर उसी के समान काम करने लगती हैं, तथा चित्त की चंचलता नष्ट हो जाने पर अर्थात निरोध होने पर इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं, अर्थात इंद्रियां का विषयों से विमुख होना। जिस प्रकार मनुष्य की छाया मनुष्य के चलने पर चलती है, बैठने पर बैठ जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां चित्त के अधीन होकर काम करने लगती है, यही प्रत्याहार है। इस अवस्था में चित्त तो बाह्य विषयों से विमुख होकर आत्म तत्व के अभिमुख होता है, पर इंद्रियां के बल बाह्य विषयों से विमुख होती है। चित्त के समान आत्म तत्व के अभिमुख नहीं होती, सामने नहीं होती। इसलिए सूत्र में अनुकार इवे इंद्रिणा नाम जैसा कहा है। ते काठ उपनिषद कांदेज कहा, स्वंभु ने इंद्रियों के छेदों को बाहर की ओर छेदा है, अर्थात इंद्रियों को बाहर मुख बनाया है। इस कारण मनुख बाहर देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। कोई बिरला तीर ही अमृत को चाहता हुआ इंद्रियों को बंद करके प्रत्याहार द्वारा अंतरात्मा को देखता है। अगले सूत्र में प्रत्याहार का फल दस रहे हैं। तथा मैंने उससे प्रत्याहार से परमा सबसे उत्तम उत्कृष्ट वश्यता वशीकरण होता है। इंद्रियणा नाम इंद्रियों का उस प्रत्याहार से इंद्रियों का उत्कृष्ट वशीकार होता है। प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता बतलाई है। जय परम वश्यता किस अपरम वश्यता की अपेक्षा से है, इसको महापुरखा ने सारी तरह ही समझाया है, दसदे हैं। प्रत्याहार होने से इंद्रियों की परम विशता हो जाती है। इंद्रियां का अपने विषयों से रहत हो जाना ही इंद्रियों को जीतना है, बकारां से रहत हो जाना। यह तभी संभव है जब चित्त अकागर हो जाता है और चित्त के निरोध होने पर इंद्रियां का भी निरोध हो जाता है, यही इंद्रियों की परम वश्यता है। प्रत्याहार सिद्धि होने पर योगी को इंद्रियां जय स्वतः हो जाती है, उसके लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इति पतंजलि योग दर्शन साधन पाद समाप्त। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।